मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 27 जुलाई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आनंद कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अजय प्रताप सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से और विपिन सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो आनंद, अजय और विपिन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हर शुक्रवार को मैं आप सबको कुछ जरूरी सूचनाएं देता हूं, तो आज भी सूचनाएं दे रहा हूं जो हर शुक्रवार की तरह ही होती हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। यहां मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, और आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बीच बीच में मेल मिलते रहते हैं कि सर शनिवार और तो इतवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर आना चाहिए, लाइफ मैनेजमेंट आना चाहिए। तो मित्रों, ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है कि आप इस तरह की मांग रख रहे हैं और आपको इसका अधिकार भी है। और सच पूछिए तो आप लोगों की यही मांग मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत भी है, क्योंकि इससे यह लगता है कि नहीं, आपकी यह जरूरत है और उस जरूरत को मेरा यह डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन मित्रों, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अपनी तरह की व्यावहारिकताएं होती हैं जिसकी वजह से सैटरडे और संडे को भी डेली ऑडियो लेक्चर कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोगों की यह जो मांग है सर माथे है, लगातार मेरे दिमाग में वह बात है और उसके माध्यम से मैं लगातार शेष 5 दिनों के लिए ऊर्जा प्राप्त करता रहता हूं। आप सबकी इस मांग के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। हाँ, प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल यानी कि शनिवार को एज इट इज मिलेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, 2 योजना के, 1 हिंदी 1 इंग्लिश में और 2 कुरुक्षेत्र के उसी तरह से 1 हिंदी में और 1 इंग्लिश में। इसके बाद एक वीकली क्वेश्चन होता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम 4 औद्योगिक जो क्रांतियां हुई हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले दूसरी खबरों को आइए देख लेते हैं। संसद ने मानव तस्करी निषेध एवं पुनर्वास विधेयक पारित कर दिया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्यों इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपने देखा है कि इस बीच में हमारे कैलाश, अब जो नोबेल प्राइज के कैलाश जी हैं, उनके भी काफी आर्टिकल्स आ रहे थे जो बच्चों के लिए काम करते हैं। और इस बीच में आपने महसूस किया होगा कि मैं देख रहा हूं कि मीडिया पर भी मानव तस्करी को लेकर के काफी खबरें आ रही हैं। देखिए, जब हम मानव तस्करी की बात करते हैं तो ये है जैसे बच्चों को गायब कर दिया, लड़कियों को गायब करके पता लगा कि वैश्यावृत्ति के काम में ढकेल दिया, बच्चों को भीख मांगने में कर दिया या बाल मजदूर बना दिया या बाहर भेज दिया। तो इस तरह से कितना अमानवीय सा लगता है ये, इस तरह की घटनाएं लगातार पढ़ने में, सुनने में और देखने में आ रही हैं। उसको लेकर के अब सरकार ने ये विधेयक बनाया है और इसमें एक अच्छी बात है कि पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स, वो रेमन मैगसेस पुरस्कार को लेकर के है कि भारत के 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला, टोटल 6 लोगों को दिया जाता है और इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, जिसमें एक है डॉक्टर भारत मटवानी जो मानसिक रूप से बीमार जो गरीब बच्चे और लोग होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और दूसरे सोनम वांगचुक जो शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। तो ये 2 नाम आपको मालूम होने चाहिए। हाँ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो जनरली अब इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती हैं, हम लोग के समय में पूछी जाती थी। हाँ, जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो सकती है। फ्रेंड्स, इमरान खान का अब लगभग पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। 1996 में उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, उस समय उनके जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी और आज 22 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बनने के लगभग लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अब देखना यह कि भारत के साथ वो क्या रवैया अख्तियार करते हैं। हालांकि चुनाव के दौरान कहा जाता है कि उन्होंने भारत विरोधी बातें कही हैं। लोगों की ये भी लोगों का विश्लेषण है कि सेना का इन्हें सपोर्ट मिला है, सेना के सहयोग के कारण इमरान खान जीते हैं, सेना के ये बहुत पक्षधर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात सच है तो फिर तो बहुत कम उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने में इमरान कोई बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो सेना ही है पाकिस्तान की जो नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो। तो हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, चुनाव से ही इमरान खान जी वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर दबदबा सेना का रहा तो मुझे नहीं लगता है कि वो उससे उबर कर कुछ कर पाएंगे। देखते हैं कि भविष्य क्या करता है। मित्रों, न्यूज के बाद मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं स्वच्छ भारत मिशन पर। ये परमेश्वरन अय्यर जी का लिखा हुआ आर्टिकल है और वो अभी केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव है और ये आपके स्वच्छता मिशन को देख रहे हैं। ये उन्होंने ये उनके निजी विचार है इसमें लिखा हुआ है, यानी कि सरकारी तरफ से कुछ नहीं होता है और चूंकि उसके सचिव हैं तो उसकी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रोटोकॉल ये अपने कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होते। इसमें उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं ये इसलिए करना मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक कोई भी बड़ा आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें से कौन सी चीज आपको पिकअप करनी चाहिए और कैसे आपको उसे अपने एग्जामिनेशन से जोड़कर देखने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। इसमें इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है पूरे आर्टिकल में, वो आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो आपको केवल एक पॉइंट दे रहा हूं। वो ये है कि जो स्वच्छता मिशन है, खुले में शौच जाने का इससे सीधा संबंध है, इसमें बहुत जबरदस्त सफलता मिल रही है। चार साल में भारत ने काफी सफलता हासिल कर ली और सच पूछिए तो शुरुआत में 39% लोग ही केवल बंद में शौच जाते थे, अब उनका प्रतिशत 87% हो गया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कह लीजिए है। लगभग 4,00,000 गांवों को शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है, 13 राज्य को घोषित किया जा चुका है, तो एक बड़ी सफलता है और अक्सर आपको पढ़ने में मिलेगा भी कि इस मिशन को बहुत सफलता मिल रही है। इसमें इन्होंने जो सबसे बड़े चैलेंज की तरफ इशारा किया है वो ये है कि ठीक है अभी तो हमें सफलता मिल गई है, लेकिन सवाल यह है कि इसके हम कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, स्थिरता इसमें कैसे लाएंगे। स्थिरता के लिए फिर उन्होंने दो पॉइंट बताए हैं। पहला तो यह है कि लोगों की आदत में को स्थिर बनाए रखना, कि लोगों को आदत ही पड़ जाए कि नहीं खुले में शौच नहीं जाना है। दूसरा कि अभी जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उन शौचालय की गुणवत्ता कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि 5-7 साल के बाद ये सारे शौचालय टूट फूट जाएं और इसके बाद गांव के लोग फिर से बाहर जाना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि वो शौचालय को ठीक करवाएं, या यूं कह लीजिए कि अगर आर्थिक स्थिति है भी तो उनको दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है, तो कहीं पुराने ढर्रे पर वो ना आ जाए। और इसमें इन्होंने बाकायदे बांग्लादेश का उदाहरण दिया है कि बांग्लादेश ने इसमें मतलब एक क्रांति कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक गड्ढे वाले शौचालय बनाए और अब फिर वहां संकट खड़ा हो गया है। हालांकि भारत में 2 गड्ढे वाले शौचालय बन रहे हैं और आपने डीडी न्यूज में देखा भी होगा, एड भी आता है अक्षय कुमार वगैरह का कि 2 गड्ढों वाला शौचालय बनाया जाना है। तो इधर उन्होंने इशारा किया है, तो इसमें से आप और पॉइंट्स जो भी ठीक लगे कुछ डेटा है वो हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों, मैं अब आता हूं चौथी औद्योगिक क्रांति पर। कल ब्रिक्स में जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था वो आपने डीडी न्यूज पर सुना होगा, उसमें उन्होंने 2 शब्द खासकर इस्तेमाल किए हैं जिनको लेकर के मैं यहां बात करने जा रहा हूं, वो है चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडस्ट्री 4.0। ये दोनों क्या है? सिविल सर्विस की तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से आप यूं कह लीजिए कि अलर्ट रहना पड़ता है। देखिए, जो हम चौथी औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं, मतलब अभी जो औद्योगिक क्रांति हो रही है ये चौथी औद्योगिक क्रांति है। इसका मतलब ये हो कि इससे पहले 3 औद्योगिक क्रांतियां हो चुकी हैं। तो वो 3 औद्योगिक क्रांतियां कौन कौन सी हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूंगा। मित्रों, पहली औद्योगिक क्रांति तो आपको मालूम है 1750 के आसपास, उसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी जब थोड़े बहुत मशीनों का बनना शुरू हुआ, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लगभग लगभग 100-125 साल बाद वो स्थितियां चलती रहीं। यो कह लीजिए कि 1875 के आसपास, 1875 से 1900 के आसपास फिर एक क्रांति हुई, इसे दूसरी क्रांति कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उनका हमने उपयोग करना शुरू किया, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मतलब एनर्जी का उपयोग यहां आने के बाद शुरू हो गया, केमिकल्स, ये सारी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, जो रासायनिक तत्व जो निकाले गए उनके उपयोग शुरू हुए, और इसके साथ ही साथ सिंथेटिक मटेरियल उपयोग में लाया जाने लगा, जैसे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, इससे पहले वो चीजें नहीं थी। तो ये जो सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से आप कह लीजिए। और इससे फिर जो फैक्ट्री थी वो ऑटोमेटिक हो गई, ऑटोमेटिक फैक्ट्री, क्योंकि एनर्जी आ गई, ऑटोमेटिक फैक्ट्री लग गई, राइट। ये दूसरा रिवोल्यूशन था। जो तीसरा रिवोल्यूशन हुआ फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं डिजिटल रिवोल्यूशन। डिजिटल रिवोल्यूशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो हुआ, ये 1980 के आसपास हुआ। इसमें आप जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त क्रांति आई, परिवर्तन आया। तो ये 1980 के आसपास जो डिजिटल रिवोल्यूशन है उसे हम इंडस्ट्री का तीसरा रिवोल्यूशन कहते हैं। और चौथा रिवोल्यूशन वो है दोस्तों जो आपके सामने घटित हो रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ढेर सारी चीजें हैं। रोबोट आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है, ऑटोमेशन व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल आ गए। ये सारी चीजें अब पूरे के पूरे इंडस्ट्री के चेहरे को बदल रही है, जिसे हम चौथी औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स में यही कहा है कि भारत इस चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तो ये औद्योगिक, चारों औद्योगिक क्रांति के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। न्यूज अगर आपने ध्यान से देखी हो तो उसमें एक और शब्द बार बार हाईलाइट कर रहा था, वो था इंडस्ट्री डैश 4.0, इंडस्ट्री 4.0। मित्रों, इंडस्ट्री 4.0 क्या है? प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली जो इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और 4 का मतलब है चार चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही। चार चीजें क्या है? साइबर फिजिकल सिस्टम एक, दूसरा है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, और चौथा है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइबर फिजिकल सिस्टम, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। जिन फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्रीज में इन चारों का उपयोग होता है, इन चारों टेक्नोलॉजी का, तो उसको हम कहने लगते हैं स्मार्ट फैक्ट्री। यानी कि ये जो फैक्ट्री है ये बहुत स्मार्ट फैक्ट्री, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्री है। इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम सहयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। उन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं, हार्दिक श्रीवास्तव, राजकुमार लड्डा जी फरीदाबाद से, सम्राट गुप्ता और आशुतोष शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को इस घोषणा के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। ये 2 दिन आपके बड़े सुखद तरीके से बीते, और आप अब अंत में मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।